लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
ओम शांति। आज के इस पट्टी के शुभारंभ में हम सभी के बीच में आदरणीय राजयोगिनी शिलू बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी तहे दिल से दीदी जी का कर्तव्यध्वनि से स्वागत करेंगे। दीदी जी कह रहे हैं मौन तपस्या भट्टी है, इसलिए एक हाथ से ही ताली बजाएंगे। विशेष आज शिलू बहन जी हम सभी को भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य बताएंगे कि तपस्या हम सभी ब्राह्मण जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। उसके पहले मैं आपका संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। बाल्यकाल से ही आप इस ईश्वरीय मार्ग में चल रहे हैं, साकार माता पिता की पालना ली हुई है और आप हमारी वरिष्ठ राज्यों का शिक्षिका है। राज्योग शिविर और अन्य कॉन्फ्रेंसिस रिट्रीट में भी आपने पार्टिसिपेट किया है। आप एक अच्छी फैकल्टी मेंबर भी हैं। राजयोगा रिसर्च एजुकेशन फाउंडेशन के अंतर्गत एजुकेशन विंग है, उसकी भी आप हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और ब्राह्मणों के रिफ्रेशिंग कोर्स भट्टी और स्व उन्नति के सारे क्लासेस आप करवाते हैं। तो आज भी हम दीदी जी का लाभ लेंगे। आदरणीय शिलू बहन जी ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन तपोभूमि में, वरदान भूमि में, परिवर्तन भूमि में प्यारे बाप दादा, सभी दादियां, सर्व मधुबन निवासी, सारे ब्राह्मण कुलभूषण की तरफ से आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी ताली बजाओ, अभी बजाओ। बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो जो मधुबन में तपस्या करने के लिए आपको ये चांस मिला है। आप में से कई भाई बहनें पुराने भी होंगे, कोई नए भी होंगे। जो पुराने हैं वो तो कई बार पांडव भवन में रहे होंगे और जो नए हैं या कुछ साल के पुराने हैं तो शांतिवन में ही आकर रहते होंगे, बाप दादा से मिलते होंगे और पांडव भवन में खाली चक्कर लगा करके जाते होंगे, लेकिन कभी यहाँ रहे नहीं होंगे। तो मैं आपसे हाथ उठवाना चाहूँगी, जो पुराने हैं पांडव भवन में रहे हैं, पहले रहते थे मना के रहे हैं, वे हाथ उठाएं। अच्छा, और जो नीचे शांतिवन में आकर रहते पांडव भवन में कभी नहीं रहे वो हाथ उठाओ, देखो कितने ज्यादा है। तो ये एक बहुत सुंदर मौका है क्योंकि जो पहले रहे भी होंगे तो अभी कितने साल हो गए होंगे रहे होंगे, पर जब से शांतिवन बना है तब से तो बहुत मुश्किल से कोई यहाँ रहे होंगे। या आए भी होंगे तो ज्ञान सरोवर में सेवार्थ रहे होंगे, पांडव भवन में भी अगर आए होंगे तो सेवार्थ रहे होंगे, सेवाधारी बन के। लेकिन पहली बार जो मधुबन में रह रहे हैं तो उनके लिए तो कहेंगे लॉटरी है, लॉटरी है बिल्कुल। आप सभी जैसे ही आए आपको ये माला पहनाई गई, माला ही थे ना आपको, और एक जैसे माला पहनाई जाती है या गले में कुछ जैसे नेकलेस भी होता है या कुछ भी होता है, तो ये एक प्रकार का संकल्प लेना होता है कि हमें मौन तपस्या बट्ठी करनी है। तो क्योंकि आपके बैज पर यही लिखा है ना, पढ़ा आपने सब क्या लिखा है, मौन तपस्या बट्ठी। तो मौन भी हो, तपस्या भी हो और बट्ठी भी हो, इन तीनों का एक सुंदर समन्वय ये 3 दिन के लिए आपको करना है। केवल मुख का मौन नहीं लेकिन मन का भी मौन हो, और मन का मौन कामयाब तब होगा जब लक्ष्य होगा कि हमको तपस्या करनी है। अभी अभी गीत सुना, ये लक्ष्य और उद्देश्य का ही गीत था इस भट्टी का, लक्ष्य और उद्देश्य। हाँ, गीत क्या था, हमें तपस्या करना है। किस लिए तपस्या करना है, लक्ष्य है कि हमें यहाँ 3 दिन पूर्ण रूप से तपस्या करना है, और उद्देश्य क्या है कि ऐसे तपस्वी मूरत बन हमको घर वापस जाना है। तो उद्देश्य बहुत ऊंचा है कि तपस्वी रूप में घर वापस जाना है और उसके लिए तपस्या करनी है। तपस्या केवल अब एक जगह बैठकर ही करने की बात नहीं है, लेकिन हर वक्त तपस्या हो, हर श्वास में तपस्या हो, हर संकल्प में तपस्या हो, हर क्षण तपस्या हो। केवल यहाँ क्लासरूम में ही नहीं, लेकिन ये पूरे 3 दिन और कुछ न सोचना है, न बोलना है, न कोई और कारोबार करना है। कारोबार से भी मुक्त होकर के आए हो, हर प्रकार से जो भी लौकिक कार्य है उससे भी मुक्त होकर के आए हो, परिवार की जिम्मेदारियों से भी मुक्त होकर के आए हो, दफ्तर दुकान या जो भी सब बोझ है उससे भी मुक्त होकर के आए हो, परंतु एक ही लक्ष्य लेकर के आए हो, हमको तपस्या करनी है, और उसके लिए यह मौन तपस्या भट्टी है। भट्टी क्यों कहा, क्योंकि भट्टी माना तपना, भट्टी माना पकना, तो पकना भी है, तपना भी है, गलना भी है, भट्टी में तो बहुत कुछ होता है। और जो चीज भट्टी में पड़ी, भट्ठे में पड़ी या भट्टी में पड़ी, वो वापस जब निकलती है तो रूप रंग गुण सब बदल जाता है, उसी रूप से नहीं निकलती है, सब बदल जाता है। कितना काला कोयला आग में पड़ता है तो क्या होता है, काला काला कोयला एकदम काला, लेकिन वो पड़ते पड़ते जलते जलते रंग बदल देता है, राख बन जाता है, तो रंग बदल दिया ना। तो रंग भी बदला, रूप भी बदला, गुण भी बदला, सब बदल गया। तो इसी प्रकार सोना डालो, भट्ठे में पकाते हैं, बहुत तेज अग्नि होती है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है सोने का, और उसमें जो भी खाद होती है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है पिघलने की का जो टेम्परेचर होता है वो सोने से कम होता है। तो जितना ज्यादा आग में पकाते हैं धीरे धीरे जो और धातु होते हैं ना सोने में, वो धीरे 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 निकलते जाते निकलते जाते निकलते जाते पिघलते जाता, वो पिघलता है और पिघलते पिघलते फिर लास्ट में इतना सोना, हाँ पक्का सोना हो जाता है। तो सोने को भी शुद्ध करने के लिए कितना बड़ा भट्ठा चढ़ाना पड़ता है, तब जाके सच्चा सोना बन के तैयार होता है। तो यहाँ भी आप मधुबन में आए हो भट्ठी में पकने, सच्चा सोना बनने। तो इस सच्चा सोना बनने में जो भी खाद है, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, ये सब खाद ही कहेंगे, एलॉय कहेंगे, तो ये सच्चा सोना बनने में विघ्न बनते हैं। इसीलिए इस भट्ठी में आपसे पत्र भी लिखवाए जाएंगे, बाबा को पत्र लिखना है, चार धाम की यात्रा भी करना है, बाबा से ही बातें करनी है, बाबा को अपना सारा समाचार देना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि और जन्मों का तो चलो पता नहीं है, पर इस जन्म का तो पता है ना कि क्या क्या मैंने पाप किए हैं, क्या क्या भूले किए, और अगर बाबा को लिख करके देंगे तो आधा माफ। धर्मराज पुरी की सजाएं से आधा तो सजाएं माफ हो जाएगी, क्योंकि बाबा के आगे सच बता दिया, और अगर बाबा को लिख के देंगे वो बाबा जाने आप जाने, और कोई न पढ़ता है न किसी को फुर्सत है किसी का पढ़ने का। कई पूछते हैं कि अगर हम बाबा को लिख के देंगे तो हम तो लिखेंगे लेकिन कोई पढ़ता तो नहीं है, हम कहते किसी को फुर्सत ही नहीं है। तो वो बाबा उस समय जब आप लिखते हैं ना उस समय बाबा पढ़ लेता है, बाबा देख लेता है, वो आपकी सच्चाई सफाई जान जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं आप निसंकोच होकर के बाबा को अपना जो कुछ भी पुराना है वो सब दे दो, सब कुछ स्वाहा कर दो, क्योंकि मधुबन तपोभूमि है तो यज्ञ कुंड भी है, बहुत बड़ा यज्ञ भगवान ने ये रचा है। इस यज्ञ कुंड से बाबा कहते विनाश की ज्वाला भी प्रज्वलित होगी, तो विनाश की ज्वाला से पहले हम अपने तो संस्कारों का विनाश करें, तभी तो दुनिया का विनाश भी होगा। लेकिन उसके लिए अपने को पकाना है, गलाना है, तपाना है, तो क्या करेंगे, और परिवर्तित होकर के यहाँ से जाना है। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि वो सात दिन भट्ठी में डालते थे तो कोई देहधारी को याद नहीं करना है, परंतु अगर याद किया तो सात दिन फिर से, फिर से सात दिन, क्योंकि याद किया तो विघ्न पड़ा। तो ये मानो जैसे क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन भी बाबा मुरली में बताते, तो क्वारंटाइन क्या होता है, किसी भी देश से आते ना, परदेश से आते या कोई भी देश से आते, वहाँ अगर कोई बीमारी है कुछ है और समझो भारत में आए तो उनको तुरंत छुट्टी नहीं देते कि यहाँ जाओ, तो पहले उनका सारा परीक्षण होता है, और अगर कोई ऐसी बीमारी होती है तो उनको अलग से रखा जाता है और सारा उनका परीक्षण करते हैं, और फिर क्वारंटाइन में उसको रखते हैं अलग से, और फिर देखते हैं कि हाँ अभी सब खत्म, फिर छुट्टी देते हैं। तो क्वारंटाइन माना अलग रहे, सबसे अलग, क्योंकि अगर सबके साथ मिलेंगे तो अपने भी जीव जो जंतु या जो कुछ कीटाणु है वो दूसरों को लगाएंगे, इसलिए क्वारंटाइन में रखते हैं। तो भट्टी माना सांप से अलग, सारी दुनिया से अलग है। तो दादियों ने तो 14 साल की भट्टी की थी और उन 14 सालों में दुनिया का मुंह नहीं देखा। दुनिया में इतना परिवर्तन आया 14 सालों में, 1937 से लेके 1950 तक। पर इन 14 सालों में दुनिया में कितना हाहाकार हुआ, विश्व युद्ध हुआ, भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन बाबा के बच्चे, जिसको बाबा कहते हैं बिल्ली के पुंगरे, वो सब सुरक्षित रहे, किनको भी आंच भी नहीं आई, इतना बाबा ने उनको सुरक्षित रखा। बाहर का कोई सेक था ही नहीं, बस तपस्या करनी है। और उस समय तो ध्यान में बहुत जाते थे, साक्षात्कार बहुत करते थे, तो कैसे ध्यान में मस्त रहते थे। और जो ध्यान में देखते थे वो आकर के ड्रामा बनाते थे और आपस में ही उनका अपना ही संसार था, अपनी दुनिया थी, दूसरा तो कुछ बाहर का वातावरण था ही नहीं। बाबा ने इतना उनको सुरक्षित रखा कि उनके मन में ये संकल्प भी नहीं आया कि हाँ हम कोई दुनिया का भी कुछ मौज ले या मजा ले। पर हाँ, फिर जब 14 साल पक्के जरूर, फिर जब यहाँ आए तो बाबा ने परीक्षा ली। खूब क्या परीक्षा ली, बेगरी पाठ चला, बेगरी पाठ चला। तो कईयों को आया अब इतना बेगरी पाठ, क्योंकि खाने को भी नहीं था और अभी क्या होगा पता नहीं क्या होगा। तो थोड़ा जो थोड़ा बहुत अलबेले रहे होंगे उनको तो संशय आने लगा, निश्चय बुद्धि की निश्चय डावाडोल होने लगा। तो फिर बाबा कहते हैं कुछ तो भागंती हो गई, झाड़ हिलता है ना या पतझड़ होती है, तो जो कमजोर पत्ते होते हैं या सूखे पत्ते होते हैं वो तो सब गिर जाते हैं और जो मजबूत होते हैं वो तो खड़े रहते हैं। तो ये भी एक परीक्षा थी, झाड़ हिलने की परीक्षा की मजबूत कितने हैं। तो देखो हमारी दादियां जो उस समय इतनी मजबूत रही, जो देखो बाबा ने कैसे उनको कितना ऊंचा बना दिया, जो सारे विश्व के आगे उनकी नजरों में आ गई। और जो सोचा पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या होगा, वो दुनिया में गए तो कहाँ पहुंच गए, मायावी दुनिया में पता ही नहीं। भले कईयों ने ये संकल्प किया हम जाके थोड़ा कमा करके बाबा को आकर देंगे, क्योंकि धन की कमी थी, कमा करके देंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे कोई जरूरत नहीं है, सावल शाह की हुंडी भरने वाला बाबा बैठा है, किसी ने किसी को टच करके जरूर भेजेगा, बाबा कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेंगे। लेकिन कईयों को संशय उठा और वो गए कि सोचकर धंधावाद करेंगे, थोड़ा कमा करके बाबा को देंगे। बाबा कहते थे बच्चे आपको जाने की जरूरत नहीं है, पर कहना नहीं माना बाबा का और गए तो गए। ओम शांति, दुनिया का सेक लग गया। अभी कितने कई पश्चाताप करते हैं, क्योंकि अगर चाहे भी ना कि हम आए तो अभी क्या आएंगे। तो जैसे कोई चौथी मंजिल से पांचवी मंजिल से गिरता है तो हड्डी हड्डी ऐसी टूट जाती है जो फिर वैसे नॉर्मल हो जाए वो तो असंभव होता है। तो पांच मंजिल से गिरना, क्योंकि सारे विकार आ जाते हैं, काम विकार तो पहला पांचवे मंजिल से गिराता है, फिर चलो क्रोध चौथे मंजिल से, लोभ तीसरे मंजिल से, मोह दूसरे मंजिल से, और अहंकार दे अभिमान ये चलो पहले मंजिल से। लेकिन गिरते तो है ना, और गिरते गिरते इतनी हड्डियां टूट जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो ज्ञान भी बुद्धि में नहीं बैठता इतने हद तक। जो बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि जिनको बाबा तीसरा चौथा नंबर रखते थे, माला बनाते थे, फिर देखो तो कहां से कहां आ गए। तो बाबा ने माला बनानी ही छोड़ दी, क्योंकि माया तो छोड़ती नहीं है ना, माया अपने ग्राहकों को क्यों छोड़ेगी। लेकिन हम तो माया के ग्राहक नहीं है ना, जो यहाँ तपस्या करने आए हैं वो माया के ग्राहक नहीं है, वो बाबा के पक्के बच्चे हैं, भाग्यशाली बच्चे हैं, तपस्वी बच्चे हैं। बस ये संकल्प से आप यहाँ 3 दिन ये बट्टी करना, और बहुत ऊंचा उद्देश्य है, क्योंकि घर में तो फिर भी समय नहीं मिलता, यहाँ आपको बाकायदे इतना समय मिलेगा 3 दिन का। जो हम शिविर में आते हैं लोग, उनको हम ये बात कहते हैं कि 3 दिन के लिए आपको एकदम विद्यार्थी बन करके चलना है। वैसे तो विद्यार्थी जीवन तो कितने साल पहले पूरी की होगी, स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कोई पढ़े भी होंगे तो, पर कितने साल पहले पूरी कर दी होगी वो विद्यार्थी जीवन, और अभी गृहस्थी में आ गए तो दूसरा ही जीवन है। परंतु यहाँ आपको फिर से 3 दिन वो विद्यार्थी जीवन का अनुभव करना है, बस और कुछ नहीं, पढ़ाई और योग, पढ़ाई और योग, बस इसके सिवा और कुछ बुद्धि में नहीं। ब्राह्मणों के लिए क्या बताते हैं, उनके कच्छ में कुरम, कच्छ में कुरम माना उनके ये क्या बोलते हैं, बगल में हमेशा कोई न कोई शास्त्र किताब, कोई नोटबुक डायरी जरूर है। तो हम ब्राह्मणों का भी यही कार्य हो, ये 3 दिन कच्छ में कुरम, हाँ डायरी पेन लाए सभी लिखेंगे ना, ये तो नहीं कि वहां गए क्या सुना सब भूल गया, सोडा वाटर तो नहीं होना है ना, तो इसीलिए नोट भी करना है, ताकि बीच बीच में रिवाइज भी करो, क्योंकि हमारे वरिष्ठ भाई बहने आएंगे, आपका क्लासेस कराएंगे, योग कराएंगे, स्वचिंतन कराएंगे, ये सब कराएंगे, तो इसीलिए उसको लिखना भी होगा, क्योंकि लिखने से थोड़ा यादाश्त और रहती है, तो इसलिए लिखेंगे। और लिखना माना अपने को स्टूडेंट समझेंगे, लिखना तो सभी होशियार तो है ना लिखने में, इसीलिए लिखना भी जरूर है, डायरी भी रखनी है अपने साथ, डायरी पेन जरूर रखनी है अपने साथ, और बिल्कुल स्टूडेंट बन करके ये 3 दिन चलना है, क्योंकि सुबह से लेकर रात्रि तक आपके कई प्रोग्राम है। टाइम टेबल देख लिया आप लोगों ने, नहीं देखा है हाँ, आपको सारा बताएंगी बहन, और बाहर लगा हुआ है आपका टाइम टेबल, उसी अनुसार आपका बड़ा व्यवस्थित बनता है सारा टाइम टेबल। लेकिन लक्ष्य एक ही है कि हमें तपस्या करनी है, तपना है, और तपना माना जो भी हमारे अंदर पुराने संस्कार हैं, कोई भी अंश मात्र भी है वो भी मुझे सब यहाँ खत्म करने हैं, क्योंकि ये पुराने संस्कार जीवाणु की तरह है, ये केवल अपने अंदर नहीं होते, कई ऐसी बीमारी होती है ना, वो छूत की बीमारी, वो दूसरे को भी लगती है, तो ये भी ऐसे ही है, ये विकारों की बीमारी ऐसे ही होती है, या पुराने संस्कार दूसरों को भी अफेक्ट तो करेंगे ना, क्योंकि या तो प्रश्न रूप में अफेक्ट करेंगे, अरे ये इतना पुराना और अभी तक देखो इसके अंदर ये संस्कार है, तो ये भी प्रश्न किसी के मन में उठता है, तो ये भी पुराना संस्कार है तभी तो उठता है। परंतु बाबा कहते हैं कि इतना परिवर्तन आ जाए, और ये भी है कि पुरानों को इतना ही रिस्पेक्ट भी देना है, क्योंकि पुरानों के लिए बाबा एक वरदान देते हैं और नयों के लिए दूसरा वरदान है। जो पुराने हैं उनको बाबा क्या वरदान देते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराने हैं बहुत सालों से ज्ञान में हैं, घिसे पिसे हैं, बहुत सामना किया है, बहुत परीक्षाएं पास की है, अग्नि में तपे हैं, तो ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड, यानी वो अभी इतने तप के बाहर निकले हैं, जो क्योंकि सोना जब शुद्ध होता है ना, फिर आप करना, फिर हम कंटिन्यू करें। सोना जब शुद्ध हो जाता है तो बहुत नरम हो जाता है, जितना उसमें जितनी खाद उसमें पड़ी होगी उतना सख्त होता जाता है, और जितना शुद्ध होता जाएगा उतना वो नरम होता जाएगा, नरम होता जाएगा। और फिर नरम होने के कारण वो जिस रूप में उसको मोड़ना चाहो उसको मोड़ सकते हो। तो क्या आ जाता, ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड, वो मुड़ सकते हैं, इतने सालों की तपस्या है। और फिर नयों के लिए क्या वरदान है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। तो नए भी कोई शिकायत न करे या शिकवा गिला न करे, बाबा हम लेट क्यों आए, बाबा हम देर से आए, हाँ बाबा अभी हम कैसे पुरुषार्थ करेंगे, पुराने तो बहुत आगे हैं, हम तो अभी बहुत पीछे आए हैं। तो बाबा उनकी भी शिकायत दूर करके क्या कहते हैं, बच्चे तुम तो पुरानों से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि अभी ऐसा खेल है ये जिसमें किसी को भी कुर्सी नहीं मिली है। सेकंड लक्ष्मी नारायण भी आउट नहीं हुआ है, केवल फर्स्ट लक्ष्मी नारायण ही आउट है, बाबा मामा बस, कि कोई सेकंड भी अभी तक बाबा ने कोई को डिक्लेयर नहीं किया है। तो आप भी बन सकते हो, नहीं बन सकते हो, भले लेट आए तो भी क्या, बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि किसी को भी अभी तक कुर्सी मिली नहीं है। सेकंड लक्ष्मी नारायण, थर्ड लक्ष्मी नारायण, फोर्थ लक्ष्मी नारायण, कोई भी फिक्स नहीं हुआ है। तो इसीलिए अभी तक माला बनी नहीं है, ब्राह्मणों की माला कब बनेगी, पूरी कब होगी, अंत में जब फरिश्ता बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि भले लेट आए लेकिन अब इतना पुरुषार्थ करो कि एक श्वास, एक संकल्प, एक घड़ी कुछ भी व्यर्थ न जाए, बस ये बुद्धि में जरूर धारण करना है। हमारी दादी जानकी जी बड़े नशे से कहती है, दादी जानकी जी क्या कहते हैं, एक बार किसी ने दादी से पूछा, दादी इतनी एक्यूरेट हर बार घड़ी पहनती नहीं है, घड़ी देखती नहीं है, लेकिन एकदम राइट टाइम बिल्कुल एक्यूरेट। तो दादी से किसने पूछा कि दादी आप घड़ी तो पहनते नहीं है, तो पर आप इतना एक्यूरेट है, बिल्कुल सब कुछ एक्यूरेट, हर एक उनका बहुत एक्यूरेट था। तो दादी ने कहा कि इसका कारण है मैं एक घड़ी भी वेस्ट नहीं करती हूँ, एक घड़ी भी, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती हूँ, इसीलिए मुझे घड़ी पहनने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हर चीज को एक्यूरेटली करती हूँ। ये दादी की विशेषता है। तो अभी तो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी तबीयत ठीक नहीं होते हुए भी दादी कल परसों ही वहाँ लोटस हाउस के, लोटस हाउस के भी आए हैं यहाँ, लोटस हाउस के कौन है एक ही, अच्छा वहाँ तो दादियों से मिलते ही रहते हैं। तो वो बता रही थी कि कैसे दादी ने कहा कि बस बाबा का योग पावर काम कर रहा है, जो बाबा इस रथ को चला रहा है, नहीं तो 100 साल की उम्र हो गई अभी तो पता नहीं क्या। तो डॉक्टर्स भी कहते अभी शरीर बहुत पुराना हो गया, जीर्ण हो गया है, तो परंतु भगवान चला रहा है, भगवान चला रहा है। तो वही दादी कहती है मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे पास यानी ये सब बाबा ही जैसे मुझे चला रहा है। दादी जानकी अपना अनुभव सुनाती है, पहले जब मैं शुरू में आई यज्ञ में तो उस समय तो जैसे मैं तो कुछ नहीं जानती थी बिल्कुल, तो बाबा के सामने बैठती थी और ऐसे ऐसे करती रहती थी, बाबा की मुरली सुनती थी, ऐसी ऐसी करती थी। तो बाबा ने इनको कहा तुम खाली ऐसे ऐसे करती रहती हो जैसे वो होता है ना ये पिजिन, क्या बोलते हैं उसको, कबूतर, कबूतर भी क्या करता रहता है ऐसे तो बाबा की मुरली सुनती है करती रहती है। तो और भी कुछ आगे करना है जो बाबा से सुनती हो वो दूसरों को सुनाओ, खाली ऊ नहीं, हाँ बस सिर हिलाना यही नहीं। तो दादी ने कहा आज क्या करना है, तो कहा जो तुम बाबा से सुनती हो ना मुरली सुनती हो वो दूसरों को सुनाओ, तो माने कि हाँ तुम अंदर में जा रहा है। तो दादी ने शुरू किया, अंदर में जाता था, फिर जाकर के सुनाती थी जो बाबा ने कहा, बस जैसे बाबा ने कहा एक्यूरेट बिल्कुल वही शब्द बाबा का सुनाती थी। तो बाबा ने कहा तुम वही सुनाती, अपना विचार सागर मंथन तो करती नहीं हो, क्या तुम तोता हो, पैरेट हो? चलो पिजिन से पैरेट बन गई। माना पिजिन माना मुंह खाली करने वाला, कुछ भी बोलने वाला नहीं, बिल्कुल शांत रहती थी, बहुत ही शाय एकदम। जैसे गुलजार दादी भी ना, दादी जानकी भी ऐसे ही थी, कुछ बहुत नहीं, वो कुछ नहीं खास बोलती थी। फिर जब बाबा ने कहा कि जो बाबा कहते अच्छा वो सुनाओ, तो बिल्कुल हूबहू वो शब्द सुनाती थी। तो फिर बाबा ने कहा क्या तुम तोता हो, हाँ पैरेट हो, पिजिन और पैरेट। तोता क्या होता है, जो सीख लिया बस वही सुना दिया, अपना विचार सागर मंथन थोड़ी करता है तोता, करेगा वही, और पता ही नहीं पड़ता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे रट लिया जो सुना, तो पैरेट है हो तुम। तो फिर दादी को लगा कि अभी क्या करना है, हाँ बाबा ने जो सुना कुछ सुना वही सुनाती, और क्या करना है। तो बाबा ने कहा नहीं, अपना विचार सागर मंथन करो। आज भी बाबा ने कहा ना, आज की मुरली थी, सुनी है सबने मुरली सुनी, हाँ बाबा ने आज मुरली में क्या कहा कि क्यों अवस्था नहीं बनती, क्योंकि जो सुनते उसका मनन चिंतन नहीं करते, खाली चलो सुना दूसरे को सुना लिया, पर अंदर जो उगाड़ना है, जैसे गाय उगाड़ती रहती है ना सवेरे सवेरे खा लिया घास, फिर दिन भर उनका मुंह चलता रहता है, जुगाली करती रहती है, जो अंदर में जो आधा बचा हुआ है फिर वो बाहर निकाल करके सारा दिन मुंह चलता रहता है, गाय का भैंस का ये ऐसे चलता रहता है, तो इनकी विशेष प्रणाली है पेट की, तो इसीलिए उसका मनन चिंतन भी करना है। तो फिर बाबा उनको जो कहते थे वो करती थी, तो विचार सागर मंथन किया, बाबा यहाँ भेजते थे वहाँ भेजते थे, तो सेवा खूब करती थी, तो सेवा करती थी तो कहती थी बस मैं तो नाच रही हूँ, जहाँ बाबा भेजे मैं जाती हूँ, तो जैसे मैं नाचती रहती हूँ बाबा की उंगलियों के तले। तो पहले पिजिन, फिर पैरेट, फिर पपेट, पपेट होता है ना, पपेट माना वो क्या बोलते हैं, कठपुतली। तो कठपुतली अपना नहीं, वो खुद के नहीं ताकत होती है, वो क्या होता है, हाँ वो दूसरा चलाता है उसको, दूसरा ऊपर से उंगलियां करता रहता है और उसके हाथ पैर चलते रहते हैं। तो कही मैं तो बस कठपुतली की तरह हूँ, बस बाबा नचाता है और मैं नाचती रहती हूँ, नाचती रहती हूँ जो जहाँ बाबा नचाता है, ऐसे ऐसे करती थी दादी। फिर बाबा ने एक बार उसको, अव्यक्त बाप दादा आए थे तो बाबा ने उनसे पूछा था, बाबा ने उनको पूछा क्योंकि उस समय बाबा पूछ रहे थे सबसे कि कब तक संपूर्ण बनना है, कब तक संपूर्ण बनना है, डेट बताओ, डेट बताओ, हाँ बाबा की एक मुरली चली थी, डेट बताओ। तो अभी कौन डेट बताए कि कब संपूर्ण बनेंगे, तो निर्वैर भाई से बाबा ने पूछा कब तक संपूर्ण बनना, डेट बताओ। तो बाबा, तो उसने कह दिया बाबा को, बाबा अगले सीजन तक सब संपूर्ण बन जाएंगे। तो बाबा ने उनको कहा आपने सबका ठेका उठाया है क्या, आपने सबका ठेका उठाया कि सब संपूर्ण बन जाएंगे। तो बेचारा अभी वो भी क्या कहे, उसको तो बड़े उमंग से जो सोचा हम जवाब देंगे, बाबा बार बार पूछ रहे हैं डेट बताओ डेट बताओ। फिर उसके बाद फिर बाबा ने और कहा कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है। फिर बाबा ने दादी से पूछा, दादी जानकी से पूछा, तो दादी जानकी ने कहा कि बाबा मैं तो तैयार हूँ, मैं तो तैयार हूँ बाबा, आप जो करना है करो, मैं तैयार हूँ, चाहे अपने पास बुलाओ चाहे जो चाहो करो, मैं तैयार हूँ। तो फिर बाबा ने उसको कहा आप तैयार हो पर दूसरों को तैयार किया है, तो बाबा ने दादी को भी नहीं छोड़ा, आप तैयार हो, खाली आप ही अकेली चलोगी क्या, आपको सबको तैयार करना है, तैयार करके सबको ले चलना है। तो दादी के अंदर जोश आ गया कि मुझे सब बाबा ने जिम्मेदारी दी, तैयार करके सबको ले चलना है। तो फिर दादी की भाषा बदल गई, पहले कहती मैं पपेट हूँ, पर कठपुतली की तरह बाबा नचाता इधर से उधर उधर, मतलब यही करती हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया घूमती थी। बाबा को कहती थी बाबा को मैं कंधे पर बिठा करके घुमाती हूँ सारी दुनिया। तो फिर तो जब कहा बाबा मैं तैयार हूँ, तो बाबा ने कहा अकेली नहीं, तो फिर दादी को इतना जोश आया, दादी ने कहा अभी मैं पायलट बनूंगी। पायलट, पायलट क्या करता है? पायलट क्या करता है? चलाता प्लेन खुद है, लेकिन कितनों को अपने साथ उड़ाता है, अकेला थोड़ी उड़ता है, सबको उड़ाता है। तो पायलट का ये धंधा है, उड़ना और उड़ाना। तो अभी मैं पायलट बन करके सबको उड़ाऊंगी, ये बाबा ने जिम्मेदारी दी है। तो बहुत उमंग बनो, कि शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन जो अंदर की विल पावर है ना दादी की, वो उससे बहुत हम प्रेरणा ले सकते हैं। अभी तो देखो आजकल के जवान लड़के लड़की ताकत ही नहीं है, जैसे कि मरे पड़े बिल्कुल। तो ऐसी इंसान की स्थिति आज कलयुगी दुनिया में तो यही हो गई है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है। पर बाबा के बच्चों ने में इतनी बाबा ने शक्ति दी है, तो तपस्या भी उतनी ही करनी है। और साथ साथ ये भी एक हमारा उद्देश्य है कि हमको बाप समान बनना है। तो बाप समान बनना माना किसी और को नहीं देखना है, उनके समान तो बनना नहीं है ना। आप समान नहीं, बाप समान। मुझे बाप समान बनना है, मुझे किसी और को नहीं देखना है। तो किसी और को नहीं देखना माना ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो करेगा वो पाएगा ना, उसको भी ज्ञान है, उसको भी पता है मुझे क्या करना है। आजकल समय ऐसा है किसी को कुछ कह नहीं सकते, हर एक समझदार है। अगर किसी को कहा तो वो कहेगा पहले आप तो करो। तो इसीलिए बाबा कहते खुद को ही देखो, खुद में ही परिवर्तन लाओ, तो आपके परिवर्तन को देख दूसरे प्रेरणा लेंगे, दूसरे को कहने की जरूरत ही नहीं है। और न आजकल किसी के अंदर, दुनिया में भी देखते हैं, सहन करने की शक्ति नहीं है, बच्चों को भी नहीं है। किसी बच्चे को कहो कि बेटा ऐसे करो, नहीं करना, नहीं करेगा, मानेगा नहीं। विदेशों में तो ऐसी स्थिति हो गई है, क्योंकि फ्रीडम है, हर प्रकार की स्वतंत्रता है, तो बच्चों से ये नहीं कहेंगे। जैसे आज भारत में तो फिर भी माँ बेटे को कि बेटा ये करो, हाँ बेटा प्यार से करेगा, आज्ञाकारी है। विदेश में तो बच्चे को ये नहीं कह सकते बेटा ये करो, हाँ बेटा ये नहीं करो, क्या कहना पड़ता है, बेटा ये करेंगे, हाँ करना, उनको कहना है करने के लिए पहले पूछना पड़ता है ये करेंगे। अगर वो कहते हाँ करूंगा तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं कर, नहीं कहेगा सीधा। तो बेटा ये नहीं करने से ये फायदा होगा, कहना पड़ता है ये करो ये नहीं करो, ऑर्डर नहीं दे सकते, किसी को भी ऑर्डर नहीं दे सकते। भारत में तो करते बच्चे, तो एक अपना अनुभव सुना रहा था, भारत में तो बच्चों को कहते हैं, और बच्चे बेचारे आज्ञाकारी होते हैं। तो वहां पर गया विदेश में, अमेरिका गया, तो उसके उसके भाई के पास गया, तो वहां उसके देखे बच्चे उसके बड़े तूफानी बहुत कुछ। तो जो अंकल था, चाचा था, तो उसने या बड़ा था, उस अपने भाई के घर गया था, अमेरिका गया था, तो देखा बच्चे ऐसे है, तो बच्चे को कह दिया बेटा ऐसे नहीं करो। तो बेटा ने तो जवाब दे दिया शट अप, सीधा कहता है मेरे को तो शौक लगा, इतना छोटा बच्चा मुझे ऐसे कह रहा है, भारत में तो ऐसे कभी नहीं कहते हैं बच्चे। लेकिन क्या है कि सभ्यता बदल गई है, संस्कृति बदल गई है, और किसी के अंदर सहन करने की ताकत ही नहीं है। इसलिए बस बाबा कहते शुभ भावना शुभकामना, बस यही सबको देनी है, और अपने व्यवहार से सबको प्रेरणा देनी है। बस कह करके नहीं कुछ करा सकते, बस प्यार से उनसे करा सकते हैं। तो इसीलिए बाबा भी हमको कितना प्यार देते, कितना प्यार, हर मुरली में देखो बाबा का प्यार ही मिलता है। पहले तो बाबा हमारी कितनी महिमा करते हैं, जितनी भी मुरलियां आप सुनो, हर मुरली में कोई न कोई बाबा हमको टाइटल देते हैं, बच्चे तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम खुदाई खिदमतगार हो, तुम होली हंस हो, तुम अव्यक्त मुरलियां चाहे साकार मुरलियां। तो ये बाबा का प्यार है, भले हम ऐसे है नहीं, लेकिन बाबा का प्यार है, इसीलिए बाबा हम बच्चों को इतना टाइटल देते हैं। लेकिन फिर बाबा देखते हैं कि बच्चे को प्यार तो इतना देता हूँ, पर बच्चे जो बाबा की इच्छा है, चाहना है, उस अनुसार इतना करते नहीं है, इतना उस अनुसार श्रीमत का पूरा पालन करते नहीं है, इतना भी प्यार दो बाबा बच्चों को। तो फिर बाबा कहेंगे अच्छा ठीक है, बच्चों को इतना प्यार तो देते हैं, लाड़ तो बहुत देते हैं, तो फिर बच्चों को टेम्पटेशन देते हैं। जैसे बच्चा होता है ना, तो प्यार से माँ कहेगी बेटा देखो तुम पढ़ोगे ना, तुम होशियार हो जाओगे ना, तो तुम ये हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, पर देखती है माँ की बच्चा पढ़ता नहीं है, तो माँ कहेगी अच्छा, पिता कहेगा अच्छा तुम पढ़ो, देखो तुम फर्स्ट आओगे ना, मैं तुमको साइकिल लेके दूंगा। हाँ पिताजी कहता है, डैडी कहेगा साइकिल लेके दूंगा, मतलब टेम्पटेशन, प्रलोभन। तो बाबा भी प्रलोभन देते नहीं देते हैं, ये भी प्यार है। क्या प्रलोभन देते हैं? हाँ तुमको स्वर्ग की भाषा ही दूंगा, तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा, तो देखो ये प्रलोभन ही तो है ना, तो प्रलोभन है, क्यों नहीं बाबा देते हैं। बाबा ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, अगर पिता बच्चे को कहता है, कोई वायदा करता है तो ऐसे ही नहीं करता है, देता है। वहां बच्चा अगर आज्ञाकारी बनता है और सचमुच उस अनुसार चलता है और फर्स्ट आया, तो पिता को की खुशी कितनी होती है। भले पिता के पास पैसा नहीं भी होगा तो भी उधार लेकर के बच्चे को जो वायदा किया है वो पूरा करना, ये भी प्यार है ना। और प्रलोभन दिया तो भगवान भी हमको प्रलोभन बहुत देते हैं, ये भी प्यार है। पर फिर भी बाबा देखता है कि इतना प्रलोभन देने के बावजूद भी बच्चे तो नटखट है, नखरे करते हैं, वो बड़े बड़े क्या बोलते हैं, बहाने देते हैं, तो कई प्रकार के चाल चलते हैं, जिसको बाबा कहते बहानेबाजी करते हैं। कहाँ गीत बज रहा है, किसका बज रहा है? मोबाइल बज रहा है, मोबाइल सब स्विच ऑफ, मोबाइल स्विच ऑफ है कि नहीं? सबके अंदर प्रवेश होते ही मोबाइल किसी के बजने नहीं चाहिए, बजाना अभी किसका बजा, पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए बाबा देखते हैं कि बच्चे फिर भी थोड़े अलबेले हैं, तो बाबा फिर तीसरा ऑप्शन लेते हैं। तीसरा क्या ऑप्शन है? बच्चे नहीं मानते, लौकिक में बच्चा नहीं मानता है, भले कितना भी प्रलोभन दिया, तो फिर बच्चे को कहेंगे अच्छा बेटा तुम ये नहीं करोगे, देखना मम्मी तुम्हारे से बात नहीं करेगी। माना क्या कहा, थोड़ा थोड़ी आंख तो दिखाएंगे ना, सजा छोटी मोटी सजा तो देंगे। तो बाबा भी क्या कहते हैं, बाबा भी क्या कहते हैं, हाँ बच्चे धर्मराज बाप के साथ है, अगर बाबा का कहना नहीं माना, श्रीमत पर नहीं चले, तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। तो कई कहते हैं धर्मराज की सजाएं बाबा डराते हैं क्या हमको? ये डराते नहीं है, लेकिन ये भी बाबा का प्यार है, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि बच्चे बाप समान बने, बच्चे संपूर्ण बने, बच्चे घर चले। ब्रह्मा बाबा भी इंतजार कर रहा है वतन में कि कब बच्चे संपूर्ण बन के बाप समान बने और बाबा के साथ घर चले, अकेला तो नहीं जाएगा ना। देखो ब्रह्मा बाबा कितना जल्दी संपूर्ण बन गए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अंदर ये विशेषता थी, जो शिव बाबा ने कहा एक उसी वक्त उसको अमल में लाया, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। शिव बाबा ने कहा बच्चे ये सारी तुम्हारी चल अचल प्रॉपर्टी सब बहनों के नाम पर विल कर दो, बाबा ने कुछ नहीं सोचा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कुछ नहीं सोचा, मेरा क्या होगा, थोड़ा अपने लिए रखूं। बस शिव बाबा ने जो कहा एक सेकंड में बाबा ने पालन करके सब आठ बहनों के नाम पर अपनी सारी चल अचल प्रॉपर्टी सब विल कर दी और खुद न्यारा हो गया। फिर बाबा ने श्रीमत दी, सबको प्रतिज्ञा कराई, पवित्र बनना है, योगी बनना है, एक बाप दूसरा न कोई, सब ने प्रतिज्ञा की, ब्रह्मा बाबा ने भी की। बाबा भी तो परिवार में थे ना, फैमिली थी ना, युगल थी, बच्चे थे, सब थे, सारा परिवार था। तो जैसे शिव बाबा ने प्रतिज्ञा कराई सबसे, तो ब्रह्मा बाबा ने भी तो प्रतिज्ञा की उसी समय। तो जैसे प्रतिज्ञा की तो चारों तरफ वातावरण बहुत नाराजगी हो गई, जो समाज में कि ये दादा ने क्या किया, दादा लेखराज ने छोटे छोटे बच्चों से प्रतिज्ञा करा ली, तो बाबा क्या, बाबा ने सामना किया, ये मैंने नहीं कराई है, ये किसने कराई है, ये शिव बाबा ने कराई है, मैंने नहीं कराई है, शिव बाबा ने जेल कराई तो मैंने भी की, केवल इन्होंने नहीं की है, मैं भी तो इनकी तरह ही फैमिली में हूँ, परिवार में हूँ, मैंने भी की। तो उनको कहते थे जो समाज के लोग थे, आप तो बूढ़े हो गए, आप तो 60 साल के हो गए, आपने तो सब बच्चे बच्चे पैदा कर दिए, पोते दोते सब हो गए, ये तो छोटे हैं। तो बाबा ने कहा कि ये इनके ऊपर है, ये जो 18 साल से ऊपर है उनका तो अधिकार है, वो अपना डिसीजन खुद लेंगे, बाकी जो छोटे हैं वो अगर माँ बाप कहते हैं भले ले जाओ ना, हमने तो किसी को रखा नहीं है, हमने न किसी को रखा है न हम किसी को भेजेंगे, जिसको चाहिए ले जाओ। फिर तो देखो कैसे बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो पक्के थे थोड़े माना 18 साल से ऊपर थे माना वो तो अधिकारी थे, फिर तो कैसे बाबा कराची गए और वहां पर 14 साल की तपस्या की, दुनिया की निगाहों से दूर, पर एक साल तो बहुत कुछ चला। तो शिव बाबा का कार्य था, तो कोई इंसान का तो कार्य है ही नहीं, अभी भी नहीं है। तो बाबा इतने पक्के रहे तो हमें भी ऐसा ही होना है, क्योंकि बाबा के सामने कुछ नहीं था, कोई लक्ष्य वो कोई आदर्श नहीं था, बस शिव बाबा ने जो कहा वो करना है। हमारे आगे तो ब्रह्मा बाप है, दादियां हैं, वो आदर्श है, प्रेरणा के स्रोत है हमारे आगे, तो हम उनको देख करके आगे बढ़े हैं। इतनी सब जो बहनें समर्पित हुई, हाँ शिव बाबा को तो आंखों से तो नहीं देख सकते, पर ब्रह्मा बाबा को, दादियों को देख करके ही जीवन समर्पण किया ना, और आप लोग भी इसी के आधार से आगे बढ़ रहे हो ज्ञान मार्ग में, कि ऐसा ऊंचा जीवन हमारा बनता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो शिव बाबा ने कहा वो किया और संपूर्ण बने, तो बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे कब संपूर्ण बने और घर चले और फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता बनने के लिए भी बाबा कहते हैं हड्डी हड्डी देनी है सेवा में, ये तन मन धन सेवा में लगाना है, नहीं तो किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए। तो यही लक्ष्य रखो, यही हमारा ऊंचा उद्देश्य है कि तपस्या करके घर जाना है, संपूर्ण बनना है।